Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radha. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaurahariba, Haribo, Haribo, Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudire Nasya Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike Srimad Bhagavatam Skandadas Adhyaya 6 Shlok Sankhya 31 Tavat Nandadayaha Gopaha Maturaya Vrajam Gata Vilokya Putana Deham Babuvaha Ati Vishmita. Tavannanda Bayogopa Tavannandadayo Gopa Maturaya Vrajam Gata Maturaya Vrajam Gata విలోక్యభూతనాదేహం విలోక్యభూతనాదేహం బభూరతివిస్మితా తానం నందాదయోగోపా మథురయా వ్రజం గతాః విలోక్యభూతనాదేహం బభూవుర్ అతివిస్మితాః. హావన్నందాదయో గోపా మధురాయావదం గతా విలోక్యభూతనాదేహం భూవాతివిస్మితా शब्दार्थ इस प्रकार है, तावत तब तक, इस बीच में नंदादयः नंद महाराज इत्यादि गोपाः सारे ग्वाले मथुराया मथुरायाः मथुरा से प्रजम वृंदावन गताः वापस आ गए, विलोक्य देखकर पूतना देहम पूतना के मृत विशाल शरीर को बबू वह हो गए अति अत्यंत विस्मिता आश्चर्यचकित।
अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाल मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पुतना के विशाल शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तात्पर्य, नंद महाराज के आश्चर्य को कई प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो यह कि ग्वाले ने इसको पूर्व वृंदावन में इतना विशाल शरीर नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फिर वे विचार करने लगे कि आखिर इतना विशाल शरीर आया कहाँ से? क्या यह आकाश से गिरा था, या क्या इसी भूल से, या किसी योगिनी की शक्ति से वे वृंदावन की किसी वृंदावन के बजाय किसी दूसरे स्थान पहुंच गए हैं, वे ठीक से अनुमान नहीं लगा सके कि क्या हुआ, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे। तुम ज्ञान विनंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। नंद महाराज और उनके जितने भी ग्वाले थे, गोप थे, वो सब गए थे मथुरा कंस को कर देने के लिए गए थे। इसके विषय में पहले हमने चर्चा किया किस प्रकार वैसे नंद महाराज कंस को कर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नंद महाराज इतने शक्तिशाली है कि वैसे 10 कंसों को ऐसे तो खत्म कर सकते, मार सकते थे, युद्ध में जीत सकते थे। इसलिए दक्षिण भारत में जो आलवारों का एक दिव्य प्रबंध करके ग्रंथ है, उसके अंदर नंद महाराज का वर्णन किया गया है जो खड्ग यानी तलवार चलाने में बहुत निपुण है। इतना निपुण है कि वो 10 कंसों को एक साथ वो युद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कर क्यों दिया? उनको वो वैश्य परिवार के होने की वजह से, तो उन्होंने सोचा सरल भाव से कि ब्रजवासियों की रक्षा हो। अगर मैं तो उनको कंस को तो युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, कंस के जितने भी असुर है बाकी सब लोग आके इधर व्रज में आके हमको परेशान करेंगे, हम सबको दुख देंगे। तो व्रजवासियों की जो संरक्षण के लिए नंद महाराज ने अपनी सरल भाव के साथ, तो उन्होंने क्या किया, नंद चलो कर दे देंगे, चलो कर देने में क्या जाता है, थोड़ा बहुत धन दे देंगे, इसके वजह से हमारी शांति तो रहेगी। लेकिन ये नंद महाराज की कोई कमजोरी या उनकी कायरता की बात नहीं है, बल्कि उनकी सरलता की बात है। इसलिए पिछले श्लोक में हमने नंद महाराज की सरलता के विषय में हमने विचार किया, किस प्रकार वसुदेव ने नंद महाराज को कहा था आप जल्दी जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि व्रज में कुछ खतरा पहुंचने वाला है। तो जैसे वो आए तो पूतना का शरीर को देखे, उनको देख के सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे। खास करके नंद महाराज ने सारे गोपों को कहा देखो वसुदेव बड़ा महान संत है, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि व्रज में कुछ ना कुछ भयानक सी घटना होने वाली है। तो नंद महाराज सारे गोपों को उन्होंने इस प्रकार कहा तो सब लोगों ने कहा हाँ सही बात है, वसुदेव जो है महान संत है, वो त्रिकालज्ञ है, हाँ उनकी बात हमेशा सच रहती है। तो संतों का ऐसा विचार होता है कि हमारा हित के बारे में सोचते हैं, हमारे जीवन में जो भी खतरा आना रहता है वो खतरे के विषय में भी वो हमको सचेत कहते हैं करते हैं। इसलिए सारे गोप लोग जो है इस प्रकार विचार करने लगे। लेकिन बात यह है कि वसुदेव क्षत्रिय है, नंद महाराज एक सरल वैश्य होने की वजह से वो ये सोचने लगे कि वसुदेव जो है उनके अंदर कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा उन्होंने ऐसा पहचाना कि उधर खतरा आने वाला है। लेकिन वसुदेव तो एक पॉलिटिशियन, एक राजा या क्षत्रिय होने की वजह से उन्होंने कोई दैवी शक्ति के द्वारा कुछ भविष्यवाणी नहीं की थी। उनके मन में विचार था, उन्होंने विचार किया, वो बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिशियन होने की वजह से उनको मालूम था कंस कितना क्रूर व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे भी कंस को मालूम पड़ा कि उनका मारने वाला पुत्र कहीं व्रज में है, तो इसलिए वो कुछ भी खतरा पहुंचा सकता है। यानी वसुदेव का जो ये पॉलिटिकल जो भावना थी वो नंद महाराज उसको नहीं सोचते हुए अपनी जो सरल भावना से वो विचार करने लगे ये नंद महाराज जो है वो वसुदेव जो है वो एक महान संत है। तो ये सरल लोगों का विचार रहता है, सरलता अति महत्वपूर्ण होता है भक्ति में प्रगति करने के लिए। जो सरल व्यक्ति रहता है वो ये जो डिप्लोमेसी जो है, खास करके ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जो है, उसमें ज़्यादा विचार नहीं करता है। राजनीति के स्तर पे, राजनीति के जो नियम होते हैं उसके अनुसार उनका विचारधारा नहीं रहता है। लेकिन ये जो राजनीति के जो विचारधारा होते हैं वो वही लोग कर सकते हैं जो बहुत भक्ति में उन्नत है। लेकिन नंद महाराज तो अपनी जो सरल भाव है उसको व्यक्त करते हुए सोचा कि वसुदेव कोई महान व्यक्ति होंगे, उन्होंने भविष्यवाणी किया है। अभी जैसे नंद महाराज इधर इस श्लोक में वर्णन किया गया तत्र नंदादयो गोपाः, तत्र उसके बाद नंदादयः, नंदादय का अर्थ क्या है, नंद इत्यादि बाकी सब गोपों के साथ में मथुराया व्रजम गताः, मथुरा से जब व्रज आ रहे थे, गता मतलब वापस आने के समय में क्या हो गया, विलोक्य पूतना देहम, वो लोगों ने पूतना का देह को देखा। आप सबको मालूम है पहले वर्णन किया गया है किस प्रकार पूतना का शरीर है, कितना लंबा है, 8 मील लंबा है, और उनका जो अलग अलग जो अंग है उसका वर्णन भी हमने सुना, उनका बाल जो है कॉपर लाल कलर के हो गए थे। ये जो पूरा वर्णन हमने पहले सुना है, ये देव को देख के क्या हुआ, विलोक्य पूतना देहम बभूर अति विस्मिताः, अति विस्मिता का अर्थ क्या है, बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य होने लगा उनको। अभी थोड़ा सा हम ये जो शब्द है आश्चर्य उसके विषय में चर्चा करेंगे, यानी विस्मिताः, विस्मय रस या अद्भुत रस, उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए भगवान को भक्ति रसामृत में वर्णन किया गया है कि अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति का अर्थ क्या है, सारे रसों का आगार है, सारे रस उनके अंदर निवास करते हैं। और भी कितने प्रकार के रस हैं, वो है 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। तो ये 5 मुख्य रस में शांत दास साख्यवाद सल्य माधुर्य 5 मुख्य है, और ये जो 7 गौण रसों में एक है वो है अद्भुत रस। तो वैसे 7 गौण रसों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, हास्य रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है, करुणा रस है, रौद्र रस है, भयानक है, बिभत्स है, ये 7 प्रकार के गौण रस माने गए हैं। एक है 5 प्रमुख है और 7 गौण है। तो अभी भगवान का ये जो अनुभव रस को अनुभव करते भी हैं और भक्तों को कराते भी हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण कृष्ण सारे रसों के आगार होने की वजह से केवल ऐसा नहीं कि वही रसों को आस्वादन करते हैं, नहीं, जितना वो रसों को आस्वादन करते हैं उसी मात्रा में भक्तों की भी आस्वादन कराते हैं। तो ये विशेषता है भगवान की। जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, वो प्रेम का रस को आस्वादन करता होगा लेकिन दूसरा व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करता होगा तो उसको आस्वादन नहीं होता प्रेम का। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितना भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं भक्त भी भगवान से उतने प्रेम करते हैं, दोनों के बीच में जो रसों का आदान प्रदान है एकदम बिल्कुल एब्सोल्यूट पोजिशन एकदम इसका जो स्थिति है वो दिव्य स्तर में होने की वजह से दोनों अति प्रसन्न रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में जो रसों का आदान प्रदान होता है तो गड़बड़ वाला मामला है, क्योंकि एक सोचता है कि मैं प्रेम करता हूँ, दूसरा सोचता है कि ये मुझे द्वेष करता है। हमेशा ये जो ट्रांजैक्शन है बराबर नहीं रहता है। इसलिए भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जो जिनसे हम प्रेम कर सकते हैं या जिनसे हम रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बाकी कहीं भी आप आदान प्रदान के लिए प्रयास करेंगे वो कुछ गड़बड़ वाला मामला रहता है। हाँ, कितने सारे लोग सुइसाइड कर लेते हैं कि नहीं, क्यों सोचते हैं कि वो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है मैं वो स्त्री से प्रेम करता हूँ, वो भी ऐसी अच्छी से बात करती है, बाद में कुछ समय के बाद पता लगा उसका विवाह का कार्ड आ जाता है तो ये व्यक्ति जो है वो उसको आत्महत्या करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रसों में गड़बड़ हो गया। पिताजी सोचते हैं कि मेरा पुत्र है, बाद में बड़ा होने के बाद पुत्र कहता है मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो हार्ट अटैक आ जाता है उनको पिताजी को कि क्या है मेरे थोड़ा जीवन भर देखभाल तो मेरे पुत्र हो, तो वो था अभी नहीं हूँ। तो इसलिए ये भौतिक जगत में जो रस है जिस इसको खोजने जाता है उसको केवल दुख ही दुख मिलता है। तो इधर इस जगत के अद्भुत रस भी ऐसा है, आप सोचोगे मैंने बड़ा अद्भुत कार्य किया, बाद में कोई देखेगा भी नहीं उसको, कोई पहचाने भी नहीं। तो आपके लिए कुछ चीज़ अद्भुत है लेकिन कुछ और के लिए अद्भुत नहीं है। तो अस्तित्व में इस जगत की जो अद्भुत चीज़ें हैं वो सारे जो चीज़ें हैं, वैसे तो हर रस के बारे में कहा जा सकता है लेकिन इधर अद्भुत रस का या विस्मित रस का वर्णन हो रहा है। तो एक ही अद्भुत इस जगत में जो अद्भुत रस जो अनुभव किया जाता है वो केवल दुखदायी होता है, लेकिन भगवान के जो लीलाएं में अद्भुत रस होता है वो आनंद प्रदान आनंददायी होता है, आनंद को प्रदान करने वाला रहता है। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा भक्त भगवान के लीलाओं में भगवान का जो अद्भुत रस किस प्रकार आस्वादन करते हैं उसके विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसके विषय में कहा गया है तो ये जो अद्भुत रस है या विस्मय रति जो है वो भक्त के हृदय में बहुत आनंद प्रदान करने वाला रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये अद्भुत रस तो आनंद कैसे मिल रहा है, जैसे पूतना का शरीर को देखा, पूतना का शरीर को देखते ही सारे नंद महाराज जितने भी गोप थे वो सब अद्भुत रस को आस्वादन किया। ये एक तो पूतना का शरीर है, वो भगवान नहीं है, भगवान का शरीर तो है नहीं, लेकिन भगवान का शरीर नहीं होने पर भी ये भगवान कृष्ण का कार्य है। भगवान कृष्ण का कार्य होने की वजह से या कृष्ण का लीला होने की वजह से कृष्ण ने उस पूतना का शरीर को स्पर्श करने की वजह से हमको ये समझना चाहिए कि ये जो जितने भी भक्त हैं वो खास करके नंद महाराज और इत्यादि गोप लोग वो भी वही आध्यात्मिक स्तर के अद्भुत रस को आस्वादन किए। ऐसा नहीं कि पूतना का शरीर को देख के, पूतना का शरीर तो जड़ मायामय शरीर है, असुरी शरीर है, राक्षसी का शरीर है, उसको देख के कौन सा रस का आस्वादन हो सकता है? बोलेंगे कि आध्यात्मिक रस का थोड़ी ना आस्वादन हो पाएगा, नहीं। पूतना का शरीर को देखने के बाद भी नंद महाराज और जितने भी अन्य गोप लोग हैं उनके हृदय में आध्यात्मिक रस का भी आध्यात्मिक अद्भुत रस या विस्मित रस का ही आस्वादन हुआ। क्यों? कारण यह है कि जितने नंद महाराज और गोप है वो सब कौन है? भगवान के पार्षद है। भगवान के पार्षद होने की वजह से उनके अंदर जरा सा भी भौतिक कल्पेश नहीं है, उन जो भी अनुभव करते केवल आध्यात्मिक ही अनुभव करते हैं। ठीक है, मान लिया कि नंद महाराज गोपादयः ये नंद और गोप इत्यादि जो अलग जो हैं नंदादयो ये सब आध्यात्मिक रस को अनुभव किया, अद्भुत रस को अनुभव किया, मान लिया। मानने के बाद जो और एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो पूतना का शरीर है, पूतना का शरीर तो राक्षसी का शरीर है, तो व्रज में राक्षसी का शरीर देख के निश्चित रूप में उनको दुख होना चाहिए, ये जो शरीर को देख के उनको दुख होना चाहिए कि अरे हमारे घर में राक्षसी कैसे आ गई। फिर उनको अद्भुत रस आनंद कैसे प्रदान किया, इसलिए सबसे पहला श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, कितने प्रकार के रस भी क्यों ना हो, भयानक रस भी क्यों ना हो, अद्भुत रस भी क्यों ना हो, बहिरंगिक दृष्टिकोण से ऐसा लगे भक्त को दुखदायी है लेकिन दुखदायी नहीं है। हाँ, ये दुख ये कैसा है, ये भक्त को केवल आनंद ही प्रदान करने वाला है। एक उदाहरण देंगे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि व्रज में भगवान ने ऐसा कुछ एक असुर आ गए, असुर आने से सारे लोगों को भय लगता है, कभी कभी आश्चर्य लगता है, तो अपने आप को इस प्रकार या भक्तों को भगवान इस प्रकार का स्थिति में क्यों डालते हैं। खास करके जब कृष्ण कालिया से युद्ध कर रहे थे, कालिया का दमन कर रहे थे, उस लीला में सबसे पहला क्या हुआ, जो जैसे भगवान उस कालिंदी में कूदे और कालिया के साथ ऐसा ऐसा बहुत रनिंग रेस हुआ, बाद में कालिया ने उनको पकड़ लिया, तब तक यशोदा नंद महाराज नहीं आए थे। ऐसा जैसे ही नंद महाराज यशोदा आए तो कृष्ण ने क्या सीन दिखाया उधर, तो कालिया जो है कृष्ण को लपेट के बैठ गया, तो जैसे ही यशोदा नंद महाराज देखे एकदम बिल्कुल भयभीत होते, अचंभित होकर कुछ लोग बेहोश हो गए, यशोदा में तो बेहोश हो गए, तो ये तो यशोदा में तो दुख लगा। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनको उनको आनंद मिला। अभी इसका जवाब ये है, कृष्ण अपने आप को इस प्रकार की खतरे में डालते हैं या एक खतरे वाली परिस्थितियों को व्रज में लाते हैं ताकि जब अपना प्रिय व्यक्ति होता है वो अगर खतरे में कोई देखते हैं तो उनके हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है जो पहले से छुपा हुआ है वो बाहर उबल के बाहर आता है, तो ये भी एक प्रकार का आनंद का कारण है। तो इधर नंद महाराज और जितने भी गोप थे ये पूतना का शरीर को देख के एकदम विस्मित होके ये विचार करने लगे, क्या विचार करने लगे कि ऐसा शरीर तो व्रज में तो हमने देखा भी नहीं देखा, ये कहाँ से आया है, ऐसा लगता है कि कोई योगी ने कुछ कहीं और भेजना था इस शरीर को, ऐसा लगता है इधर आके गिर पड़ा, ऐसा लोग विचार करने लगे। ऐसे उन सब लोग सोचने लगे कुछ तो खतरा है, कुछ तो गड़बड़ है, इस प्रकार का कार्य कभी व्रज में नहीं हुआ, तो हमारे कृष्ण क्या किए होंगे, क्या कैसे होंगे। ये जिस सबको चीज ये सब का स्मरण करते हुए नंद महाराज और सारे गोप जो है ये विस्मित रस को आस्वादन किया। अभी ये जो विस्मय रस या ये जो अद्भुत रस जो है या ये दोनों में ये दो प्रकार का है, एक है कि साक्षात कृष्ण का और उनकी लीला को देख के अनुभव करना, दूसरा क्या है साक्षात कृष्ण के जो लीलाओं को जो दर्शन किया है या सुना है उसको सुनने के द्वारा हमारे जीवन में अनुभव करना। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, एक है सीधा डायरेक्ट, दूसरा है गौण। तो साक्षात यथा यानी साक्षात जो दर्शन होता है उसका, और दूसरा जो सुनने के द्वारा होता है ये श्रुतम। साक्षात और श्रुतम दो प्रकार के विस्मय रस है, विस्मित रस है। तो सबसे पहला कुछ उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद किनका साक्षात अद्भुत रस का वर्णन देते हैं। सबसे पहला उन्होंने उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया, नंद महाराज ने देखा, नंद महाराज और सारे गोप लोग और कहाँ गए थे, द्वारका गए थे, तो द्वारका गए थे उन्होंने देखा कि उधर एक ही कृष्ण है लेकिन सब महल में एक ही समय उपस्थित है। अभी व्रज में भगवान की लीलाओं को दर्शन तो किए थे लेकिन ये जो लीला है वो एक ही समय भगवान अनेकों अनेकों जगह है, ये नंद महाराज या गोप लोग ने देखा नहीं था। वैसे तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को व्रज में दिखाया, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया अनेक रूपों में, हम देखते हैं कृष्ण जो है अपने अनेक रूपों में गोपियों के सामने विस्तार किया, लेकिन नंद महाराज जो है ये कभी विचार नहीं किए थे कि मेरा पुत्र एक ही है, एक होने पर भी अनेकों जगह कैसे है, इसको देखते ही एकदम विस्मित हो गए, अस्टॉनिश्ड अबाउट इट। और दूसरा उदाहरण देते हैं, कि व्रज में सब गोपियां जब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, धोरण धारण करने के बाद तो क्या हुआ, सब 7 दिन हो गया, सब जैसे कृष्ण बाहर आए सबको कहा कि चलो, तब यशोदा माई के अंदर इतना वात्सल्य प्रेम हुआ, कृष्ण को दूध पिलाने लगी। सारे गोपियां इसको देख के अचंभित हो गए, अरे ये खात ने अभी तो गोवर्धन धारण किया, अभी माँ के स्तन से दूध पी रहा है, ये क्या है। और एक उदाहरण दिया गया है कि ये दो उदाहरण दिया गया है किसका, साक्षात दर्शन का। वैसे अनेकों है, लेकिन इत्यादि करके अनेकों रसों को वर्णन करते हैं, अनेकों इस प्रकार की लीलाएं करके बताया गया है। बाद में श्रुतम, सुनने के द्वारा, हाँ, कृष्ण जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने नरकासुर का वध का वर्णन कर रहे थे। जब नरकासुर का वध का वर्णन करने के समय तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नरकासुर को 11 अक्षौहिणी सेना थी। ये 11 अक्षौहिणी सेना मतलब एक अक्षौहिणी हजारों हजारों हाथी घोड़े इतने सारे रहते हैं। तो सब लोगों के साथ में नरकासुर आके कृष्ण को प्रहार किया। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण ने केवल 3 बाण निकाले और सबको मार दिए। परीक्षित महाराज ऐसे हो गया, क्योंकि खुद क्षत्रिय है, वो जानते युद्ध करना साधारण चीज नहीं है। अभी खाली 3 बाणों से सबको खत्म कर दिए। ये जो है वे विश्वस्त्रस है। और बाद में ब्रह्मा जी, जैसे ऑल द बॉयज इन कास्ट द फोर आर्म्स डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, तो ब्रह्मा जी भी ये जो अद्भुत रस है उसका आसन। तो ब्रह्मा जी ये ब्रह्म विमोहन लीला के बाद वो अपने ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाके तो ये जो उन्होंने जो अनुभव किया वो उनका जो आश्चर्य की बात थी, उन्होंने क्या किया, वो सब ब्रह्म विमोहन लीला यानी खुद का विमोहन का जो लीला है वो जाके ब्रह्मलोक में सुनाए। और ब्रह्मलोक के वासी के सुन के कि कृष्ण ने सारे ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में ऐसा विस्तार किया कि सब गाल बाल जैसे थे कि वैसा ऐसा रूप धारण किया, उनके स्वभाव के अनुसार कार्य किया। खाली ये सुनने मात्र से सब लोग एकदम अचंभित हो गए कि ब्रह्मा जी ने जैसे कहा कि मैंने देखा ये जो विष्णु मूर्ति का रूप है वो कृष्ण के ही अवतार है, कृष्ण के ही विस्तार है। ये सुनने मात्र से सब लोग विस्मित हो गए। तो बाद में और एक है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आश्चर्य का अनुभव करना या विस्मय रस का आस्वादन करना, ये कब होता है, जब वो कल्पना करते हैं। ये कल्पना के द्वारा होता है। कल्पना मतलब कि वो कुछ देखे नहीं है और सुने भी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ होगा करके स्मरण मात्र से एक प्रकार का विस्मय रस को अनुभव करते हैं। जैसे क्या हुआ कि ब्रह्मांड ये जो भांडीर वन की बात है, तो उधर अचानक से कृष्ण ऐसा कर रहे थे, क्या हुआ, एक फॉरेस्ट फायर दावाग्नि उत्पन्न हुआ, तो सारे जंगल में आग लग गया। जैसे आग लग गया तो सारे ग्वाल बाल एकदम भयभीत हो गए। तो कृष्ण ने कहा सबको आंख बंद कर लो, सब लोगों ने आंख बंद कर लिया। तो कृष्ण ने क्या किया, दावाग्नि को पी लिया। और बाद में कृष्ण ने कहा सब लोग आंख खोलो, आंख खोला तो अग्नि तो है नहीं। तो ये ग्वाल बालों ने कृष्ण को ये अग्नि को पीते हुए नहीं देखा, ना अग्नि को पिया करके किसी से सुना नहीं, लेकिन ये समझ गए स्मरण में ऐसा था कि पहले अग्नि था अभी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण ने इतना बड़ा दावाग्नि को बुझा दिया, पता नहीं कैसे किया होगा, तो पी लिया है या पानी डाला है हमको नहीं मालूम, लेकिन ऐसे तो डिस्क्रिप्शन तो है कृष्ण ने पिया करके, लेकिन ग्वाल बालों को थोड़ी ना मालूम है कि उन्होंने पिया था, कान से निकाल अंदर लिया था, मुंह से अंदर लिया था, पानी डाला था या अपने योग शक्ति के द्वारा उसको बुझा दिया था, उनको कुछ नहीं मालूम था। ये देख के उनके अंदर आश्चर्य जगह, इतना बड़ा दावाग्नि है, हमने आंख बंद किया और कुछ समय का खुला तो है ही नहीं। ये जो है और एक विस्मय रस है। अभी श्रील रूप गोस्वामी का ये जो विस्मय रस का अंत में कहते हैं, एंड में इस बात को कहते हैं कि ये सामान्यतः हम भी देखा गया है। जैसे आप सब गृहस्थ लोग देखे होंगे अपने अपने घरों में बच्चे होते हैं, जैसे एक छोटा सा शिशु है वो अभी थोड़ा सा वो घुटनों के बल में चलना सीखा है कि नहीं। हाँ, पहली बार वो देखते घुटनों के बल चलना, वो देख के क्या हो जाते, आश्चर्य, ये चलने लग गया देखो, है कि नहीं। हाँ, अगर मान लो दूसरे घर का कोई बच्चा करता है तो कुछ परवाह नहीं लगता, कोई आश्चर्य नहीं लगता। तब श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये जो विस्मय रस है वही व्यक्ति आस्वादन करता है जो उस वस्तु या जिससे वो विस्मय उत्पन्न हो रहा है, जिस व्यक्ति से वो विस्मय उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति प्रेम हो। अगर प्रेम नहीं है कितना भी अद्भुत कार्य क्यों ना करे वो अद्भुत रस का आस्वादन नहीं होगा। अगर मान लो अगर प्रेम है, अगर छोटा सा भी कार्य करे ना तो भी वो बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक लगे, है कि नहीं। हाँ, तो ये हमको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये शिक्षा कैसे, ये इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है? शिक्षा है भगवान की जो भौतिक जगत है ना वो भी अद्भुत है, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, लेकिन भगवान की जो लीला है, आध्यात्मिक सृष्टि है, आध्यात्मिक कार्यकलाप है, वो भी भगवान की है, वो भी अद्भुत है। अभी अगर हम ये जो भौतिक जगत की अद्भुतता के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, उसको देख के अचंभित हो जाएंगे, इसका अर्थ क्या है? हमारे हृदय में किसके प्रति प्रेम है? कृष्ण के प्रति, है ना, भौतिक चीजों के प्रति प्रेम है। अगर भगवान की छोटे से कार्य मक्खन चोरी किया, अरे ये इसको देख के अगर आश्चर्य हो जाता है, विस्मय होता है, तो इसका अर्थ क्या है? हमको कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो इसलिए भक्तों के सामने आप कितना भी अद्भुत चीज को प्रकाशित करो भौतिक स्तर में, मोबाइल फोन दो या कुछ एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें आता है ना, अरे ये कर दिया, ओ हुआ, बाद में ओलंपिक्स में ये जीता, ये किया, उसने ये किया, बताओ, अरे फालतू चीज ऐसा बोलेगा, उसमें कोई उनको अद्भुतता नजर नहीं आएगी। क्यों? उसके प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है। कभी कभी कोई गांव से शहर में आता है, जो बिल्डिंग देखा आश्चर्य हो जाता है, अद्भुत है उसके लिए, क्या अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उस कभी भी उन चीज में प्रेम है, इसकी अद्भुत अद्भुत लग रहा है। अगर प्रेम नहीं है कितना भी अद्भुत हो, जरा सा भी उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक वक्त है जो श्री गोपाल गोस्वामी महाराज के विषय में वो कर रहे बता रहे थे, उनकी उनके उनके गुणगान कर रहे थे, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मैं ऐसे सुन रहा था एक बार। तो उन्होंने कहा कि महाराज से ऐसा एक बार सेवा करते हैं, महाराज ने कहा मैं जब मॉन्ट्रियल में था, मॉन्ट्रियल में मतलब कनाडा में थे उस समय, कभी अमेरिका आया चलते थे, जाया करते थे, उनके माता पिता उनके जो और लोग थे वो आए थे एक बार मॉन्ट्रियल में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उनको लेके जा रहा था, तो मैं हमेशा हफ्ते 15 दिन में रोज वो मॉन्ट्रियल से अमेरिका के अंदर आना पड़ता था, हर बार आके जा रहा रहता था, और रास्ते में एक बड़ा विश्व में सबसे आश्चर्यजनक वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या था, नायगरा फॉल्स, जानते हैं, उधर से पार होना पड़ता था, और उसको देखने के लिए सारे जगत के लोग आते थे, विश्व में सब लोग आके देखते थे। तो महाराज ने कहा कि मैं उधर से अनेकों बार गया लेकिन एक बार भी नहीं गया, देखने के लिए भी नहीं गया। तो भक्त ने पूछा, महाराज व्हाई यू डिड नॉट गो? ने देखा कि ये इस पे कौन सा बड़ी बात है, अब बाथरूम में जाओ नल खोलो उधर से ही पानी गिरता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सारे जगत के लोग, आई नेवर फेल्ट दैट आई शुड गो एंड सी दिस। ठीक है, पानी तो इधर से नल में तो इधर से नीचे गिर रहा है 2 मीटर का, वो थोड़ा बच्चा ऊपर से गिरता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सब लोग इधर देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अपने गांव में भी जब बारिश आता है उससे ऊपर से आता है ना, लेकिन आपके गांव में देखा होगा ऊपर देखो इतना ऊंचे से बाढ़ नीचे गिर रहा है। तो एक भक्त होता है तो वो उनका ये भौतिक जगत का जो कार्य है, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर के एक गीत में गाते हैं ये जगत विचित्र ऐसा कुछ है ना, सम दिस, हाँ एक ऐसा गीत है उसके अंदर, ये जगत बड़ा विचित्र है लेकिन ये देखने पर भी भक्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ उनको आश्चर्य नहीं लगता है। लेकिन और दूसरी ओर भगवान का जो चीज है वो एक छोटा सा कार्य भी बड़ा आश्चर्य लगता है, विस्मय हो जाता है, क्यों? प्रेम क्या है। और एक उदाहरण ने उसी इसमें बताया कि वो फ्रांस में रहते थे, पढ़ाई करते थे उस समय में, तो उस समय उनके घर वालों ने कहा कि हम आना चाहते हैं फ्रांस में। तो लगा क्यों? तो महाराज ने कहा, उनके परिवार ने कहा कि नहीं, वी वांट टू सी द ईफिल टावर। फ्रांस में बहुत बड़ा टावर है ना, पेरिस में ईफिल टावर करके। तब महाराज ने कहा कि दे डिड नॉट कम टू सी मी, दे केम टू सी द ईफिल टावर, वेयर आई वाज स्टेइंग नेक्स्ट टू ईफिल टावर। मैं ईफिल टावर के बाजू में मेरा हॉस्टल था, मैं जिस घर में रहता था उधर हॉस्टल था, लेकिन अभी उसको देखा भी नहीं मैंने। लेकिन इंडिया से फोन करके बोलते हैं, हम उसको देखने के लिए आएंगे हम। तो यही अंतर है, दैट इज द डिफरेंस। अगर इस जगत में कोई आश्चर्यजनक बात कुछ है, विस्मित होने वाली बात अगर कुछ है, वो एक ही है। क्या है वो? वो है ना, आप जानते हैं यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद में, किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है? तब युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा कि हनी हनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, हाँ अन्य स्थावरम इच्छन्ति, बाकी लोग जो है सब लोग जा रहे हैं यमालय में जा रहे रोज, लेकिन अन्य बाकी जितने भी जिए सोचे अभी मैं इधर मैं रहूंगा शांत। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बढ़कर कौन सा आश्चर्य है? तो अगर कोई इस भौतिक जगत का ये आश्चर्य को स्वीकार करता है, इसको देख के आश्चर्यित होकर अपना सीरियस हो जाता है भक्ति में, तो निश्चित रूप में हमको भगवान ऐसा प्रेम हमारे हृदय में प्रकट करेंगे, भगवान के एक छोटे से कार्य भी अद्भुत लगने लग जाता है। इवन ए स्मॉल एक्टिविटी ऑफ कृष्णा, क्या है मक्खन चोरी कर लिया, ये पूरा दामोदर मास में हम चर्चा करते हैं, लेकिन कृष्ण क्या किया, मटकी तोड़ा, उसके विषय में कितने सारे लिटरेचर्स, कितने गीत है, कितने भक्त लोग 5000 साल के बाद भी उसके विषय में गाते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। अभी हमने इधर जगत में बम फूटता है, हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन खबर रहते हैं, बाद में कोई उसको पूछता ही नहीं है कि भगवान ने खाली मटकी फोड़ा तो उसके विषय में, क्यों? ये प्रेम है। इफ यू लव कृष्णा, एवरी एक्टिविटी ऑफ कृष्णा विल बी ए वंडर। इफ यू डोंट लव कृष्णा, अगर कृष्ण में प्रेम नहीं है, कृष्ण गोवर्धन उठाएंगे तो यार पता नहीं उठा दिया होगा। तो नंद महाराज गोपो में इतना प्रेम था कि उनको कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं हुआ लीला था, तो पुतना को देख के, ये शरीर को देख के उन्होंने इमेजिन किया कुछ तो हुआ रहेगा। तो इसलिए एक तरीके से बताया जाए, एक है श्रुतम, जैसे मैंने कहा सुनना, और दूसरा क्या है, पहला कौन सा है, दृष्टम मतलब देखना, दूसरा है श्रुतम, और तीसरा है अनुमितम मतलब अनुमानितम, अनुमानितम को अनुमितम कहा गया है। तो ये कुछ चीजें हैं। संकीर्तितम अनुमितम, एक चार एक्चुअली। सबसे पहला है साक्षात, दूसरा है यथोक्तम श्रीदर्शने, तो श्रुतम श्रुतम यथा, संकीर्तितम यथा, अनुमितम यथा, ये चार चीजें हैं श्री रूप गोस्वामी भक्ति सामर सिंधु में ये विस्मित रस के विषय में कहते हैं। हरे कृष्णा। प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? हाँ भय नहीं है, पहला प्रश्न ये है आपका, ये विस्मित शब्द का तो भय नहीं है, ये सही बात है। ये जो इधर जो है, हाँ ये देखिए, अद्भुत, मैं रसों का लिस्ट पढ़ता हूँ इसके अंदर, ठीक है? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हास्य अद्भुत है, ठीक है। रस का शुरुआत के चैप्टर में अद्भुत रस लिखा है, ठीक है। लेकिन जब उस चैप्टर को खोलेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, एक मिनट वात्सल, मैं वो श्लोक ही पढ़ता हूँ। नागरी भक्ति हास्य अद्भुत, इसका इंग्लिश में पढ़ता हूं। When विस्मय रति becomes pleasurable in the devotee's heart by suitable vibhava and other elements, it is known as adbhuta bhakti, adbhuta rasa। तो ये जो विस्मय रति को जब भक्त को आनंद प्रदान करता है, उस आनंद को अद्भुत रस कहा गया है, ऐसा पहला श्लोक में कहा गया है। आत्मोचिते विभावाय विभावादयः स्वादत्वं भक्त चेतसी स विस्मय रतिर् नीताद्भुत, विस्मय रतिर् नीताद्भुत भक्ति रसो भवेत्। ठीक है, आपका पहला प्रश्न हो गया, हाँ हो गया ना। अभी दूसरा, दूसरा क्या प्रश्न था? हाँ अच्छा प्रश्न। अभी आपको जानना चाहिए ये जो पांच रस है, शांत दास साक्षी वात्सल्य और माधुर्य, और ये जो सात गौण रस है वो है ये हास्य अद्भुत इत्यादि। ये गौण रस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे है। गौण का अर्थ क्या समझना चाहिए? गौण का अर्थ ये नहीं कि नीचे है, बल्कि गौण का अर्थ ये है कि ये जो सात है, सात रस है, ये पांचों रसों में अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में प्रकट होता है। ये एक तरीके से बताया जाए ये स्थायी नहीं माना जाता है, इसलिए उसको गौण माना गया है। ऐसा नहीं कि कुछ नीचे है। जैसे माधुरी में भी आपको विस्मित रस है या अद्भुत रस है, भयानक रस है, हाँ। ये सारे रस जो है पांचों के पांचों रसों के अंतर्गत होता है। ये गौण शब्द का अर्थ ये नहीं कि नीचे है। गौण शब्द का अर्थ क्या है? जो कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, जो स्थायी नहीं है, हाँ। इसलिए कुछ ऐसे भाव होते हैं, कुछ व्यभिचारी भाव होते हैं, कुछ स्थायी भोजात, कुछ संचारी भाव होता है। ये भक्ति रसामृत में इसका बहुत विस्तार से व्याख्या किया गया है। वैसे उसके लिए तैयारी नहीं किया मैंने, उन संचारी रस के बीच में और व्यभिचारी रस क्या है, स्थायी रस क्या है, उसके अंदर भी डेफिनेशंस है, वो मैं बहुत साल पहले पढ़ा था। अभी उसको अगर बताऊँगा तो भी थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए नहीं बताऊँगा। लेकिन बात यह है कि जिस चीज़ को हमने गौण समझा है, वो गौण इसलिए नहीं कि क्योंकि वो नीचे है, निम्न नहीं है। तो असलियत में एक जगह ऐसा वर्णन किया गया है, ये जो सात रस का प्राकट्य होता है, ये जो मुख्य रसों का यानी ये जो पांच रसों को पोषण करने के लिए। जैसे यशोदा मैंने क्या किया, जैसे कृष्ण के शरीर में उन्होंने क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड को देखा, तो जैसे देखते ही उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या अनुभव किया, विस्मय, अद्भुत। जैसे इस रस का अनुभव किया तो उनका वात्सल्य और बढ़ गया। अभी उसी प्रकार ये जो दामोदर लीला में भी, तो दो उनको दाम बंधन लीला, रस्सी बांध, यशोदा ने क्या अनुभव किया, दो उंगली छोटी है, और एक रस्सी लाई फिर बांधी और दो उंगली छोटी हुई। तो दामोदर लीला में भी आपको ये देख सकते हैं कि वात्सल्य में अद्भुत का वर्ण हो रहा है, तो इस पे कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।
How is this different from Krishna says?
आश्चर्यवत दैट इज स्टिल विच नॉट हैव टू टेक अबाउट इग्नोरेंट पर्सन ignorant person, if he doesn't hear from a proper source, wherein the soul is.